ओम शांति। ये है शक्ति द्वारा इक्यानवे का प्राप्त क्लास। रिकॉर्ड चला है उन मनुष्य नीचे नीचे स्थिति भी बच्चों ने महिमा का गीत सुना। किसकी महिमा है? ऊंचे थे ऊंचे भगवान जिसको पति का पावन सुख हरता सुख करता कहा जाता है। सुख देने वाले को याद किया जाता है, दुख देने वाले को कोई याद करना नहीं होता। बच्चे जानते हैं सुख देने वाला एक ही परम पिता परमात्मा। सभी मनुष्य मात्र उनको ही याद करते और धर्म वाले भी कहते हैं कि बाप आकर के दुख से निवृत्त कर सुख देते हैं, परंतु ये नहीं जानते कि बाप सुख देते हैं फिर दुख कौन देता है और कब देता है, कौन नहीं जानते। और धर्म वाले ये नहीं जानते कि दुख कौन देता है और कब देता है। ये भी तुम समझते हो नई दुनिया तो पुरानी जरूर होनी है, तो उनको सुखदान कहा जाता है। कलयुग के अंत के बाद से सचिव जरूर आएगा। शक्ति तो एक ही है, मनुष्य इस शक्ति के चक्र को बिल्कुल जानते नहीं, इसलिए बाबा पूछते हैं तुमको इतना मूर्ख बनाने वाला कौन है। बाप तो किसको दुख नहीं देते हैं, बाप तो सदा सुख देते हैं। तुम जानते हो सुख देने वाले का जन्म स्थान भी भारत में है। किसका जन्म का स्थान? किसका जन्म स्थान भारत में? सुख देने वाले का जन्म स्थान भारत में है। भारत में कहाँ है? जन्म किसे कहा जाता है सुख देने वाले का? सुख देने वाला तो परम पिता परमात्मा ही है, वो तो ज्योति जिंदगी निराकार है। तो जन्म स्थान कैसे होगा? साकार में प्रवेश करता है तो प्रवेश तो बहुत पहले से किया हुआ है, तो जन्म स्थान क्या कहें? सुन हैदराबाद या कलकत्ता, जन्म का मतलब क्या है उसका? उसका तो सिद्धि जन्म गाया हुआ है, अलौकिक जन्म गाया हुआ है। जन्म अर्थात प्रत्यक्षता। हद में जैसे बच्चे का जन्म होता है तो बच्चा बाहर आता है तो प्रत्यक्ष हुआ, पहले गर्भ में गुप्त था। ऐसे ही परमात्मा भी प्रत्यक्ष पर आता तो है लेकिन प्रत्यक्ष नहीं होता, गुप्त रहता है। और जब प्रत्यक्ष होता है तो कहा जाता है जन्म। तो प्रत्यक्ष का रूप किसी भी जन्म है, पहले प्रत्यक्षता किसको होगी? बच्चा घर में पैदा होता है तो पहले पहले किसको पता चलता है? माता पिता को, घर वालों को, पास पड़ोसियों गांव वालों को, फिर बाहर वालों को। तो यहाँ तो फिर बेहद की बात है, कोई हद की स्थूल बात नहीं है। तो तुम जानते हो सुख देने वाले का जन्म स्थान भी भारत में, तो सुख देने वाले का जन्म स्थान भी भारत में। दोनों का जन्म भारत में ही होता है, दुख देने वाला कौन है? रावण।
और सुख देने वाला कौन है उसकी भेंट में? राम। तो राम जो सुख देने वाला है उसका जन्म भी भारत में है और दुख देने वाला रावण उसका जन्म भी भारत में है। दोनों ही भारत में है। भारत स्थान ही है या कोई व्यक्ति भी है? व्यक्ति ही है, सिर्फ स्थान नहीं है। स्थान भी है तो भारत भी, क्योंकि व्यक्ति किसी स्थान पर ही टिकेगा। जो व्यक्त होगा, साकार होगा, उसके लिए कोई स्थान तो जरूर चाहिए। तो स्थान भारत में है और भारत व्यक्तित्व भी है, दोनों की तरफ ये बात लागू होती है। राम और रावण दोनों का जन्म भारत में है। अगर व्यक्तित्व को लिया जाए तो इससे तो फिर यही साबित होता है कि जो राम बनता है कोई है, कलयुग के अंत में क्या बनता है? रावण बनता है। जो सतयुग के आदि में कृष्ण होता है वही कलयुग के अंत में क्या बनता है? कंस बनता है। तो बाबा की बात बिल्कुल सही है, मुरलियों में बोला हुआ है, ऐसे नहीं कि ये बात बोली नहीं हुई है। जो राम बनता है कोई रावण बनता है, और जो आदि में कृष्ण बनता है वो ही अंत में संत बनता है। ये क्या बात हुई? ऐसा कैसे हो सकता है? जब परमात्मा शिव की प्रवेशता है तो कंस या रावण नहीं कहा जा सकता, और जब प्रवेशता नहीं है, वो आत्मा तमो प्रधान बन गई तो क्या कहेंगे? जो ऊंच से ऊंच वही नीच से नीच बनता है। ऊंच से ऊंचे धर्म पिताएं इस समय नीच से नीच तमो प्रधान है। तो बताया हुआ है, शिव शंकर को मिला के एक नहीं कर देना। भक्ति मार्ग में शंकर का चित्र ऐसे दिखाया है जैसे रावण, भयंकर चित्र भी बना देते हैं। अगर ऐसा ही है तो फिर परमात्मा उनको चुनता क्यों है? है? ऐसों को क्यों चुनता है जो नीच से नीच बनते हैं? हाँ, नीच से नीच को ही परमात्मा ऊंच से ऊंचा कर बनाता है, लेकिन उनमें ऐसी शिफ्ट कौन सी है, विशेषता कौन सी है जो नीच से नीच बनने के बावजूद भी ऊंच से ऊंच बन जाते हैं? अगर ऐसा ही है तब तो नीच बनना बहुत अच्छा है, अब तो नीचे बनते रहो। नीच पतित तमो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना चाहिए, क्योंकि जितने नीचे गिरेंगे उतने ऊंचे चढ़ेंगे। तो भारत में ही यह क्या खासियत है जो भगवान भारत में ही आता है, और किसी देश में नहीं और किसी व्यक्ति में नहीं? कोई तो खासियत होगी। अविनाशी, अविनाशी तो सत्य को कहा जाता है। असत्य क्या होता है? विनाशी होता है, और सत्य अविनाशी होता है। गॉड इज ट्रुथ कहा जाता है। तो ट्रुथ बाप को क्या प्रिय है? सच्चाई। सच्चे दिल पर साहब राज। कोई कितना भी पतित समो प्रधान अजामिल जैसा महापापी क्यों न हो, लेकिन अगर परमात्मा के प्रति सच्चा है तो वो सच्चा परमात्मा के दिल में जगह आता है। परमात्मा उसी को चुनता है, इसलिए मुरली में बोला हुआ है, अपना पूरा कोटा मेल देने वाला कोई कोटों में एक है। करोड़ों पुरुषार्थ करने वालों में कोई एक है जो पूरा पूरा पोता मिल देता है, वरना कुछ न कुछ दे अभिमानी के बसीभूत होकर या परमात्मा बाप को न पहचानने के कारण पूरा पूरा पोता मिल नहीं देते, कुछ न कुछ छिपाते जरूर परसेंटेज में से। तो सुख देने वाले का जन्म स्थान भारत में और दुख देने वाले का भी जन्म स्थान भारत में, इसलिए बोला हुआ है राम सीता को खादी की राजा रानी कहेंगे, तब लक्ष्मी नारायण को क्या कहेंगे मखमल के राजा रानी, और राम सीता खादी के राजा रानी। लेकिन कब? कलयुग अंत में खादी के राजा रानी, और सतयुग आदि में वही आत्मा है सतयुग के महाराजा महारानी मखमल के बन जाते। खादी की विशेषता क्या है? खादी संगम युगी बरसात के पीरियड में भारी हो जाती है, शरीर से चिपक जाती है, देह अभिमान से चिपक जाती है, छूटती नहीं, और गंदी जल्दी होती है। फिर ये भी विशेषता है कि साफ भी जल्दी होती है, और सर्दी के सतयुग त्रेता रूपी मौसम में गर्म बहुत रहती है, और द्वापर कलयुग के गर्मी के मौसम में ठंडक भी बहुत देती है। लेकिन दुखदाई कौन सी युग में? सिर्फ संगम युग के बरसात के पीरियड में, क्योंकि उस समय कलयुग भी विराजता है। जब तक संगम का कलयुगी पीरियड है तब तक वो आत्माएं विश्व के लिए दुखदाई अनुभव में आती है, परमात्मा की दृष्टि में नहीं, क्योंकि वो धर्मराज का पार्ट बजाने वाली आत्मा है, महाकाल और महाकाली का पार्ट बजाने वाली आत्मा है। तो ज्ञानी आत्मा के लिए तो ऐसा अनुभव नहीं होना चाहिए, बाकी जो अज्ञानी है ये घड़ी घड़ी संशय निश्चय के झोले में डोलते रहते हैं, तो उनको जरूर दुखदाई अनुभव होंगे, रावण अनुभव होंगे। रावण कोई खास एक व्यक्ति का नाम नहीं होता, रावयते लोकान, जो लोगों को रुलाता है वही रावण कहा जाता है। अब कारण देखना बाद की बात, किस कारण रुलाया, अच्छे कारण से रुलाया या बुरे कारण से रुलाया, रुलाया रुलाने का कर्तव्य किया तो रावण हुआ। तो सुख देने वाले का भी जन्म स्थान वही है जो सुख देने वाले का जन्म स्थान है, परंतु समझते कुछ भी नहीं। अगर समझे तो शिव शंकर को मिला के एक नहीं कर दें क्या? भक्ति मार्ग में शिव और शंकर को मिला के एक कर दिया, आदम और खुदा को मिला के एक कर दिया, लेकिन कहावत है कि आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं कहते भी है, और आदम खुदा के नूर से जुदा नहीं। लेकिन कब? जब खुदा उसमें प्रवेश होता है तब जुदा नहीं है, बाकी कोई हर समय बैल पे सवारी थोड़े ही होती है। जब सवारी होगी तो जुदा नहीं है, और सवारी नहीं होगी तो जुदा है। तो स्वभाव संस्कार में फिर फर्क पड़ेगा या नहीं है? जब शिव बाप की प्रवेशता होगी तो स्वभाव संस्कार में फर्क जरूर पड़ेगा, और जब प्रवेशता नहीं होगी तो भी फर्क जरूर पड़ेगा। अच्छा, तो अब हम संपर्क में किसके आए, हम संबंध में किसके आए? शिव बाबा का तो पता ही नहीं लगता कि किस घड़ी प्रवेश होता है और किस घड़ी चला जाता है, उसके जन्म का तो पता मालूम ही नहीं पड़ता, न आने का पता लगता है न जाने का। हाँ, ज्ञान से पता चलता है, लेकिन बाबा ने ये डायरेक्शन दिया हुआ है तुम अच्छे ऐसा ही समझो कि शिव बाबा सदैव इसमें बैठा हुआ है, मैं इनकी हर एक एक्टिविटी का जिम्मेवार हूँ, ये उल्टा करे या सुल्टा, उल्टा भी करेगा तो भी मैं इसको सुल्टा बना दूंगा। तो आप ये तो धारणा करना बहुत मुश्किल है, लेकिन सहज को मुश्किल करने वाला बाप कहते हैं कि जिनका मेरे से लव है तो लव में कोई भी चीज कोई भी काम मुश्किल नहीं होता। प्यार एक ऐसी चीज है जो पत्थर को भी पिघलाए देती है, तो रावण को चेंज करना कोई बड़ी बात नहीं है। आखिर हमने पहचाना किसको है, ब्रह्मा विष्णु शंकर को पहचाना है या शिव बाप ज्योति बिंदु गॉड फादर को पहचाना है, किसको पहचाना है? चेंज होने वालों को पहचाना है या जो सदा अपरिवर्तनीय है सदा शिव है उसको पहचाना है? हमने कनेक्शन किससे जोड़ा है, कौन सी आत्मा से? शिव से कनेक्शन जोड़ा है या कलयुग के अंत में आकर के जो शिव सब बन जाते हैं, सब माना मुर्दा, कब्र दाखिल हो जाते हैं, उनको पहचाना है? अरे ब्रह्मा विष्णु शंकर का पार्ट बजाने वाली जो साकार सृष्टि की आत्माएं हैं उनको तो हम 63 जन्म अच्छी तरह से पहचानते रहे, उनको पहचानना तो क्या पहचानना हुआ? अब हमने किसको पहचाना है? अब तमो प्रधान में आए हुए उस तत्व प्रधान परमात्मा को पहचाना है, परम पिता को पहचाना है जो कभी चेंज होने वाला नहीं है, उसकी आत्मा कभी ऊपर और नीचे नहीं होती, उसका नाम दिया हुआ अच्युतम जो कभी ऊंची स्टेज से नीचे नहीं गिरता, कभी नीची स्टेज का पार्ट नहीं बजाता। तो ये समझने की बात है कि सुख देने वाले का जन्म स्थान और दुख देने वाले का जन्म स्थान है तो भारत में ही, समय भी एक है, क्योंकि संगम युग में ही राम और रावण की पहचान होती है, प्रत्यक्षता होती है। उससे पहले तो हम रावण को जानते ही नहीं, समझते हैं कोई दस सिर का कोई व्यक्ति होगा, दस सिर का तो कोई व्यक्ति होता ही नहीं। तो हुआ है ऊंच से ऊंच भगवान की जयंती, जो भारत में आते हैं उनका नाम है शिव, शिव अर्थात कल्याणकारी, और जहां कल्याण है वहां रोने रुलाने का प्रश्न नहीं हो सकता। ज्ञान में चलने के बावजूद भी जो आत्माएं किसी भी कारण रोती है या रुलाती है तो वो कल्याण का कार्य नहीं है, इसलिए बाबा कहते हैं मैं रोने वालों को पसंद नहीं करता, क्योंकि शिव बाबा का नाम है शिव तो काम भी है शिव कल्याणकारी, किसी भी बात में वो अकल्याणकारी नहीं है। हम भले अज्ञानता के कारण उसको अकल्याणकारी समझें, लेकिन रिजल्ट में बाद में समझेंगे कि परमात्मा हर तरीके से हर प्रकार से कल्याणकारी है। ये किसको पता नहीं है कि वो बाप कैसे आकर के सुख देते, ये तरीके का पता नहीं है कि परमात्मा का सुख देने का तरीका क्या है। दुख देने वालों के तरीके का पता लगा लो, दुखदाई कौन? रावण। रावण कब से आता है? द्वापर युग से। द्वापर युग से रावण आता है, तो नाम पड़ा द्वापर मान दोपुर, एक पुर नहीं दोपुर, जैसे दो घर बन जाए, बाप के दो बच्चे हों और दोनों अलग अलग हो जाए बाप के सामने ही, तो बाप का नाम बदनाम हुआ या सरनाम हुआ? एकता खंडित हुई या बनी रही? खून एक कहेंगे, जरूर कहीं न कहीं कोई न कोई मिलती है, तो स्वभाव संस्कार टकराने लगे। एक घर नहीं रहा, अब जब एक घर नहीं है, घर ही दो हो गए, तो टकराव तो जरूर होगा, क्योंकि दीवारें बन गई बीच में, और जहां दीवारें बनती है वहां दिल टूटते हैं। तो बाप आकर के कैसे सुख देते हैं ये भी नहीं जानते, रावण कैसे दुख देते हैं ये भी नहीं जानते। अभी तुमको नॉलेज है कि बाप कैसे आकर के सुख देते हैं, बाद में ये नॉलेज भी प्राय लोप हो जाएगी। सुख देने वाले की ही महिमा गाई जाती है, दुख देने वाले का किसको पता नहीं है? जब पता ही नहीं पड़ता तो महिमा या ज्ञानी करने की बात ही नहीं। रावण को वर्ष वर्ष जलाते, क्यों? हर वर्ष क्यों जलाते? एक बार जल गया तो खलास हो गया, फिर वर्ष वर्ष जलाने की क्या बात है? मरता ही नहीं, क्यों? जब जला दिया तो खाक हो गया, फिर वर्ष वर्ष क्यों जलेगा है? अरे कोई चीज एक बार जला दी जाती है, राख कर दी जाती है, तो खलास हो जाती है, फिर बार बार जलाने की जरूरत पड़ती है। ये है संगम युग की बात। संगम युग में 63 जन्मों का जो देह वाहन भरा हुआ है वो एकदम कोई खलास नहीं होता। जो बीज रूप आत्माएं हैं, बीज बनते हैं, वो तो बहुत ही जटिल है। जड़ों के ऊपर भी छिलका होता है, बीजों के ऊपर भी छिलका होता है। जब बीज सुधर जाए तो सारी शक्ति सुधर जाए। उस शक्ति रूपी रंगमंच पर या इस शक्ति रूपी झाड़ पर कोई कोई पत्ते हैं ढेर के ढेर, पत्तों का परिवर्तन तो जल्दी हो सकता है लेकिन बीजों का परिवर्तन जल्दी नहीं होता, क्योंकि बीज अगर सुधर जाए तो सारा वृक्ष सुधर जाए। तो ब्राह्मणों की संगमी भी दुनिया में बीज रूप आत्माएं भी है जो पूरे 84 जन्म लेने वाली है, आधार रूप आत्माएं भी है जो नंबरवार जन्म लेने वाली है, और फिर ढेर के ढेर 500 करोड़ पत्ते दिए। ऊपर से आने वाले धर्म पिता हैं जो द्वैत फैलाते हैं, दो मार्ग चला देते हैं। पहले तो दुनिया में एक ही मार्ग था, एक ही देवी देवता सनातन धर्म था, दूसरा कोई धर्म नहीं था, दूसरा कोई राजा नहीं था। बाद में जब ये धर्म पिता आते हैं तो इनके आने से दो दो मतें हो जाती, मतें बढ़ती चली जाती, तो आपस में टकराव होता है और टकराव होने से दुख शुरू होता है। तो बाप जब आता है तो यही काम करता है, पहले एकता का, और एकता पवित्रता के बगैर नहीं हो सकती। एक के प्रति जब तक दृष्टि वृत्ति कृति मन वचन कर्म समय संपर्क संबंध तन मन धन पूरा अर्पण नहीं है तो वो एकता की पवित्रता नहीं आ सकती। प्योरिटी के बगैर यूनिटी नहीं हो सकती। जब द्वैत पैदा होता है तो यूनिटी टूटती है, संगठन भंग होता है दुनिया में और आपस में टकराव शुरू होता है। तो बाप आकर यही तरीका बताते हैं, सिखाते हैं कि अब एकता पैदा करो, पवित्रता अपने जीवन में अपनाओ। एक बाप दूसरा नहीं। अगर एक बाप के प्रति 100% तन मन धन समय संपर्क संबंध सब अर्पण कर दिया जाए तो उसी समय से वो आत्मा सुखी हो जाएगी, दुख लेस मात्र भी अनुभव नहीं कर सकती, गारंटी है। लेकिन बाबा मुरलियों में प्रश्न पूछते रहते, हम गाड सागर के बच्चे तो फिर हम दुखी क्यों, हम नरक में क्यों बैठे हैं? अरब पति करोड़पति का बच्चा हो और पैसे पैसे का मोहताज, ऐसा कैसे हो सकता? जरूर उसका संबंध कनेक्शन बाप से टूटा हुआ, कनेक्शन कहीं दूसरों से जुड़ा हुआ जो उसको नीचे ले जाने वाले, पैसे पैसे के लिए मोहताज बनाने वाले। तो ऐसे ही परमात्मा बाप से जब तक हम आत्माओं का पूरा कनेक्शन नहीं जुटा तन से मन से धन से, ऐसे नहीं कि तन से कनेक्शन जुट गया तो मन से न जुड़े, या कोई कहे कि हम तो हमारा मन बुद्धि तो हमारी परमात्मा में ही है, तन से वाला हम दूर हैं। नहीं, जहां हमारा तन होगा वहां हमारा मन जरूर जाएगा, धन जरूर जाएगा। ऐसे नहीं कि तन और धन दूसरी जगह लगाते रहे और मन कहीं दूसरी जगह लगा रहे, नहीं। और मन जब जहां पहुंच जाता है तो तन भी वहीं पहुंचेगा, दोनों अरस परस है। क्योंकि मन की शक्ति तो बहुत तीव्र शक्ति है, मन की एकाग्रता अगर एक जगह एकाग्र हो जाए परमात्मा के प्रति अग्रसारित तो हो जाए मुड़ जाए तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि जो तन को और उसके धन को रोक सके। तो सुख कहां से आता है और दुख कब आता है? द्वैत से आता है दुख और अद्वैत से आता है सुख। एक में है सुख और अनेक में है सुख। 500 करोड़ मनुष्य आत्माओं में से ऐसी भी कोई आत्माएं होंगी नंबर वन जो अपने 84 जन्मों में एक के साथ ही संबंध जोड़ती होंगी। कौन सा संबंध? सब संबंधों में से खास संबंध कौन सा है जो मरते दम तक मनुष्य का पीछा नहीं छोड़ता? सत्युग आदि से लेकर के कलयुग अंत तक वो संबंध खींचता रहता है। वो कौन सा संबंध है? पिता का। अगर पिता का ही संबंध मुख्य होता फिर तो सबको पुरुष का जन्म मिलना चाहिए। लक्ष्मी जब शरीर छोड़े तो उसे किसकी स्मृति आई? है नारायण की स्मृति आएगी तो पुरुष का जन्म मिलता है, और नारायण शरीर छोड़ता है तो किसकी स्मृति में शरीर छोड़ता है? लक्ष्मी की स्मृति में। तो काय का जन्म मिलेगा, स्त्री टोला मिलेगा। अगर बाप की स्मृति में सब पुरुष या स्त्री शरीर छोड़ते रहे हो तो जन्म भी उनको काय का मिलना चाहिए, पुरुष का जन्म मिलना चाहिए। लेकिन ये सच्ची होती है दो से, स्त्री पुरुष के संयोग से। अब वो संयोग शिष्टाचारी हो, श्रेष्ठ इंद्रियों का हो या भ्रष्ट इंद्रियों का, नीची दुनिया का, लेकिन संयोग से ही, उस योग से ही शक्ति संचालित होती है। तो दो का ही खेल है। किसका? दो कौन है? स्त्री और पुरुष। धन सतयुग त्रेता में ये भान नहीं रहेगा स्त्री पुरुष का, लेकिन संबंध तो स्त्री पुरुष का है ना, देह भान नहीं होगा। लेकिन संतान आखिर मुख के प्यार से तो होगी ना, श्रेष्ठ इंद्रियों के कनेक्शन से होगी ना। तो क्या श्रेष्ठ इंद्रियां आंख या मुख ये देह का अंग नहीं है? अंग तो है लेकिन श्रेष्ठ इंद्रियां, इसमें मूत्र बलि की होने की बात नहीं है। और जो श्रेष्ठता है वो स्थाई ज्यादा होती है। तो देवताओं का सुख होता है स्थाई, और द्वापर युग से मनुष्यों का सुख होता है क्षण भंगुर, क्योंकि नीची स्टेज का सुख है। जितनी सच्चाई होगी उतना ज्यादा स्थिरियम होगा, और जितना झूठापन होगा, नीचपना होगा, उतना ही स्थिरता नहीं ले सकती, गिरेगा जरूर। तो पाप समझाते हैं कि हर आत्मा का पार्ट अलग अलग, कोई में तो अद्वैत की वासना बहुत भरी हुई है और कोई में द्वैत की वासना बहुत भरी हुई है। तो जिन आत्माओं में द्वैत की वासना बहुत भरी हुई है, 63 जन्मों के अनेक जन्मों के संसार हैं, अनेकों के साथ विचारी बनकर के रहने के, वो आत्माएं सुख का लेन देन जरूर करेंगी। परमात्मा कितना भी ज्ञान सुनाए लेकिन उनके ऊपर जल्दी असर पड़ने वाला नहीं है। इसलिए बाप को भारत में आना पड़ता है। भारत ही एक ऐसा खंड है जहाँ पवित्रता को विशेष मान दिया गया आदि से लेकर के अंत तक। अभी भी भारत में कन्याओं माताओं के लिए विशेष ध्यान रखा जाता है उनकी प्योरिटी का। विदेशों में और दूसरे धर्मों में ये बात नहीं है, वहाँ डाइवोर्स की प्रथा, तलाक की प्रथा धर्म में नुझी हुई है। भारत में ये बात अच्छी नहीं मानी जाती। सबके द्वारा एक कैंडल का पैकेट ला पहले पेज का मर्ज। तो प्रश्न है पतित कैसे बने?
हाँ,
दूसरे धर्म की जो आत्माएं आई, दूसरी प्रकार की धारणाएं बनाने वाली, फैलाने वाली, चलाने वाली, उन आत्माओं के संग के रंग में आने से हम पतित बने, तो अब उल्टा कर देना चाहिए। फिर क्या करें? जो अव्वल नंबर का धर्म स्थापन करने वाला अल्लाह अव्वल दीन है, उस अल्लाह अव्वल दीन के धर्म को फॉलो करें, उसे एक का ही संग करें, मन से भी, तन से भी, क्योंकि लेन देन करने से भी कर्मों का बंधन बंधता जरूर है। तो हमको 21 जन्मों के सुख की प्राप्ति हो सकती है। 21 जन्मों के लिए तो गारंटी है। फिर जितना जैसा जिसका पुरुषार्थ, अच्छा पुरुषार्थ ही होगा, एक बाप दूसरा न कोई का, इस रास्ते का, तो हो सकता है कि 84 जन्मों में से 82-83 जन्म तक भी सुख शांति में रहे, लास्ट जन्म में तो सुख जरूर होगा, क्योंकि जब तक सुख न हो तो सुख की वैल्यू नहीं हो सकती, रात न हो तो दिन की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। तो पतित कैसे बनते हैं? एक के संग से पावन बनते हैं और अनेकों के संग से पतित बनते हैं। पुकारते हैं परंतु अर्थ नहीं जानते हैं। क्या पुकारते हैं? हे पतित पावन आओ, हमको पतित से पावन बनाओ। ऐसे कोई नहीं कहता आकर के ज्ञान सुनाओ। भक्ति मार्ग में क्या कहते हैं? पतित पावन आओ, ज्ञान सुनाने के लिए नहीं कहते। क्या कहते हैं? हम पतितों को, हम दुर्गति को पाने वालों की सदगति करो, गति और सदगति दो, सुख और शांति दो। इस समय है ही भारत में भक्ति मार्ग, शास्त्र भी सब भक्ति मार के, शास्त्रों में कोई सदगति का ज्ञान नहीं है। क्यों? दुर्गति का ज्ञान है। अगर शास्त्रों में सदगति का ज्ञान होता तो श्रेष्ठ जन्मों में सदगति होती, लेकिन होती क्या रही? शास्त्र पढ़ते गए, दुर्गति होती रही, फिर सदगति कहाँ से होगी? शास्त्रों से सदगति नहीं होती। शास्त्रों में सबसे ऊंचे से ऊंचा जो शास्त्र है कौन सा? श्रीमद् भगवत गीता। एक गीता शास्त्र ही भगवान का गाया हुआ माना जाता है, लेकिन वो कागज का शास्त्र नहीं। शास्त्र मानव शासन करना, शास्त्र मानव शासन करने वाला विधान, और अच्छे से अच्छा शासन करने का विधान जो है, संविधान बनाने वाला, बताने वाला एक परमपिता परमात्मा के सिवाय कोई हो नहीं सकता। वो परमात्मा बाप ही आकर के विश्व की बात कही देता है, जिसको जो उस संविधान को पूरा पूरा समझता है, जानता है उसको, फिर उसके बाद नंबर वार पुरस्कार बनता है। तो सदगति का ज्ञान किसी के पास नहीं, शास्त्रों में भी नहीं है तो शास्त्रकारों में भी नहीं, क्योंकि बाप आकर के मुख से जो ज्ञान सुनाते वो डायरेक्ट मुख से सुना हुआ ज्ञान ही गीता है। बाकी कोई बाद में टेप रिकॉर्ड में भरा हुआ या कागज में लिखा हुआ या किसी दूसरे मुख से सुनाया हुआ वो ज्ञान नहीं है, निश्चित रूप से अज्ञान है। ये क्या बात हुई? एक घड़ा दूध भर दो और उसमें एक बूंद जिसका
आरोपण कर दूं, क्या हो जाएगा? सार ही किस हो जाएगा? तो परमात्मा जिस मुख का मुकर तन का आधार लेकर के जो सुनाते हैं वो तो है अमृत 100%। लेकिन दूसरी मनुष्य आत्मा, क्योंकि 100% सच्चा तो कोई इस दुनिया में है ही नहीं, मिक्स तो जरूर कुछ न कुछ होता ही रहेगा, तो अगर थोड़ा भी मिक्स हो गया किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा परमात्मा ज्ञान सुनाते समय तो वो क्या हो जाएगा? अंत में रिजल्ट उसका क्या निकलेगा? विष हो जाएगा। तो एक बाप दूसरा न कोई। कितनी बार मुरलियों में बाबा ने बच्चों को समझाया, बच्चे एक सतगुरु निराकार से सदगति और अनेक देहधारी मनुष्य गुरुओं से दुर्गति। तो जब अनेक मनुष्य देहधारी गुरुओं से दुर्गति, तो हम ज्ञान सुनने के लिए उसको धारण करने के लिए आखिर पूरी सत्ता विश्वास निश्चय क्या किसी आत्मा के ऊपर न बैठे क्या है? ऐसा तो हो नहीं सकता कि हर समय परमात्मा बापी हमारे कान में फूंकता रहेगा ज्ञान है? ऐसा तो जिस तन में प्रवेश करता है उसमें भी नहीं होता, तो दूसरों में कैसे हो सकता? ये क्या किया जाए? तो ये है स्मृति की बात। बाबा कहते हैं तुम बच्चे जितना मेरे को स्मृति में रखेंगे, याद में रहेंगे, उतना मैं तुम्हारे साथ बाप से बातें करूं। चलते फिरते उठते बैठते कर्मयोग में लगे रहो, कर्मयोगी बनो। परमात्मा बाप से बातें करना वो भी योग है, वो कोई वियोग नहीं है, लेकिन प्रीति बुद्धि होंगे तो बातें भी कर सकेंगे, और विपरीत बुद्धि होंगे तो प्यार की बातें भी कर सकेंगे, फिर अंदर अंदर ग्लानी और संघर्ष चलता रहेगा, झगड़ा चलेगा, जैसे रावण का राम से झगड़ा चला। तो बजाय प्राप्ति होने के और ही घाटा होगा। ज्ञान सागर एक ही परम पिता परमात्मा है, जरूर उनको ही ज्ञान देना, ज्ञान और कोई दे ही नहीं सकता। ज्ञान मान पहचान, ज्ञान जानना, जानकारी, सच्ची जानकारी वही है ज्ञान, और झूठी जानकारी वो है अज्ञान। तो क्या सांस जान लोगों को जिस बात का ज्ञान है, क्या वो अज्ञान है? आजकल के वैज्ञानिकों को किस बात का ज्ञान है? झूठा ज्ञान है, झूठा ज्ञान तो नहीं कहेंगे, क्यों? झूठा ज्ञान कहेंगे उनका या सच्चा ज्ञान कहेंगे? झूठा इसलिए कहेंगे कि जो प्रकृति के पांच तत्व हैं उनका उन्होंने विश्लेषण तो किया है, जानकारी तो ली है, लेकिन उसकी पूरी जानकारी सिवाय प्रकृति पति के और किसी को हो नहीं सकती। विज्ञान चाहे जितना ही आगे बढ़ जाए, लेकिन पूरी पूरी जानकारी किसी को नहीं हो सकती। प्रकृति पति बाप ही पांच तत्वों का पूरा अन्वेषण करने वाला है, जानने वाला है, उसके सिवाय और कोई प्रकृति के पांच तत्वों को, रावण को और राम को अलग अलग करके बताने वाला नहीं है। तो ज्ञान वही देता है, उसी ही को ज्ञान देना है, वही सतगुरु है, बाकी सब
जब एक ही सतगुरु है तो बाकी सब क्या हो गए?
बाकी सब हो गए झूठे गुरु।
वही सदगति दाता है, इसलिए उनको पुकारते हैं आकर के दुर्गति से बचाओ,
दुर्गति से बचाओ।
बचाया किससे जाता है? कोई चिल्लाए कि हमको बचाओ बचाओ, तो इसका मतलब कोई है जो उसको तंग कर रहा है, तो दुर्गति से बचाओ मन। कोई है जो पीछे पड़े हुए हैं दुर्गति में ले जाने के, उनसे बचाओ। तो परमात्मा बाप आकर के दुर्गति से बचाता है, सदगति देता है, इसलिए उनको पुकारते हैं कि आकर के दुर्गति से बचाओ। ऐसे नहीं कि परमात्मा आया ज्ञान सुना कि चला गया और फिर दुर्गति से हम बचते रहेंगे, नहीं, वो आकर के स्वयं दुर्गति से बचाता है। ऐसे नहीं सिर्फ ज्ञान सुना के चला जाता है, ब्राह्मण बना के चला जाता है, नहीं, शुद्ध से ब्राह्मण बनना है पहली मशीनरी, फिर ब्राह्मण से देवता बनाना यह है दूसरी मशीनरी, तो तुम बच्चों की है डबल मशीनरी, मिशनरी कहो। इसलिए उनको पुकारते हैं कि आकर के दुर्गति से बचाओ, परंतु हम सत्व प्रधान पुजारी बनते हैं, हम पुनर्जन्म लेते आए हैं, पहले पहले जन्म जरूर अच्छा होगा, फिर उतरते आते हैं, जो भी मनुष्य आते हैं सीढ़ी तो जरूर उतरेंगे। बल्लभ बुद्ध आदि का नाम सीढ़ी में नहीं दिया हुआ है, क्यों? बुद्ध आदि का नाम सीढ़ी में क्यों नहीं दिया हुआ है? क्योंकि सीढ़ी है 84 जन्म लेने वालों की, कम जन्म लेने वालों की सीढ़ी नहीं है। अगर उनको देखाएंगे सीढ़ी में, फिर उनको भी सीढ़ी तो उतरनी है, इनको दूसरे धर्म वालों को, तो उनको सत्व रजतों में तो आना ही है। अभी सब तमो प्रधान है, आप पाप समझाते हैं, शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग के हैं, ज्ञान मार्ग के कोई भी शास्त्र नहीं होते, जिसमें अनेक प्रकार के कर्म कांड हैं, कर्म कांड ये करो वो करो वो करो, सच्चा कर्म योग कोई सिखाने वाले शास्त्र नहीं है। ज्ञान देने वाला तो एक ही बात है, ज्ञान सागर ही आकर के सच्चा ज्ञान सुनाते हैं, बाकी सब झूठा ज्ञान सुनाते हैं। आधा कल्प है दिन, उसमें भक्ति की बात है नहीं है, दिन कौन सा आधा कल्प? ऐसे नहीं सचुग रहता आधा कल्प सुख होता है और द्वापर कलयुग आधा कल्प दुख होता है, तो वो रात हो गई। बात सुख और दुख, रात और दिन का ज्ञान ही नहीं है सच्चा किसी को, ये कहाँ की बात है? ये संगम युग की बात है, जब ज्ञान सूर्य किसी साकार तन में प्रत्यक्ष होता है तो जैसे दिन है, और जब अप्रत्यक्ष हो जाता है, संशय हो जाता है, तो अज्ञान अंधेरी रात हो जाती है। ये संशय की यादगार कहाँ है? है? संशय की यादगार कहाँ है? सनराइज की यादगार कहाँ है? है? माउंट आबू में सनसेट पॉइंट दिखाया हुआ है, और दूसरा शहर कौन सा है? है? जहाँ ज्ञान सूर्योदय होता है, है? कौन से? यहाँ उदय हो गया, पड़ोस में जाकर के देखो भाई, दीपक के नीचे तो अंधेरा हो सकता है, और सूर्य के नीचे जहाँ सूर्य होगा वहाँ अंधेरा हो सकता है, नहीं? माउंट आबू में अगर सनराइज हुआ होता तो माउंट आबू की रहने वाले तो आज तक कोई भी नहीं समझ सके, कोई ब्रह्मा कुमार बने हैं माउंट आबू का खास रहने वाला, अभी तक भी कोई ब्रह्मा कुमार नहीं बन सकता, क्योंकि दीपक तले अंधेरा तो ज्ञान सूर्य उदय हुआ नहीं कहा जा सकता। तो कोई शहर है जिसका नाम ही रखा हुआ है क्या है? ज्ञान सूर्य प्रगटा तो अज्ञान अंधेर विनाश। वो शहर तो जरूर राजाओं के स्थान में होना चाहिए है, क्योंकि राजा बनने वाली राजा बेटा आत्मा ही परमात्मा बाप को रिस्पेक्ट करेंगे। अब हमारा तो स्थान भी कोई स्कूल नहीं है क्या? हमारा सूर्य भी कोई स्कूल नहीं है तो चंद्रमा भी कोई स्कूल नहीं है, हमारे शहर भी कोई स्कूल नहीं है, दिल्ली भी चैतन्य तो बम्बई भी चैतन्य, कलकत्ता भी चैतन्य, लंदन भी चैतन्य, न्यूयॉर्क भी चैतन्य। तो देहद का जो राजस्थान है उसमें भी जो खास नई दुनिया की पालना करने का नई पाल है, वहाँ कोई ऐसा शहर भी है नई दुनिया की पालना करने वालों के संगठन में जहाँ से परमात्मा बाप विशेष रूप से प्रकट होता है। तो वो ज्ञान देने वाला है एक ही, सत्य ज्ञान सुनाता है, उसमें भी फिर आधा कल्प दिन और आधा कल्प रात होती है। दिन में भी ठोकरे नहीं खाते, दिन में कभी ठोकरे खाने की बात नहीं, क्यों? क्योंकि ज्ञान सूर्य प्रकट हुआ पड़ा है। बुद्ध रूपी धरनी में अगर ज्ञान सूर्य प्रत्यक्ष हो जाए, निश्चय हो जाए, तो निश्चय वाली आत्मा कभी ठोकरे नहीं खा सकती। ठोकरे कौन सी आत्मा खाएगी? ठोकरे कौन सी आत्मा खाएगी? जो जिसकी बुद्धि में अज्ञान का अंधेरा होगा, जिसके सामने ज्ञान सूर्य प्रत्यक्ष नहीं होगा, ज्ञान सूर्य छुपा हुआ तो जरूर अंधेरा होगा, और अंधेरा है तो निश्चय बुद्धि कहेंगे, निश्चय बुद्धि बीजेपी की लिस्ट में कहेंगे नहीं कह सकते, जरूर वो अंधेरी रात में ब्रह्मा का दिन नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे उस समय? ब्रह्मा की रात, जिस समय जिन बच्चों को अनिश्चय होता है उस समय उनका पाप मर जाता है। घड़ी घड़ी निश्चय बुद्धि, घड़ी घड़ी अनिश्चय बुद्धि, तो घड़ी घड़ी में बाप जिंदा होता है, घड़ी घड़ी में बाप मर जाता है। बाप तो नहीं जिंदा होता है न मरता है, वो तो आया हुआ है सत्य रूपी रंगमंच पर तो काम पूरा करके ही जाएगा, लेकिन बुद्ध रूपी धरने की बात है, हर आत्मा की बुद्ध रूपी धरनी अपनी अपनी, तो कभी विदेश में चली जाती आत्मा, और जब बुद्धि विदेशी बन जाती है, बुद्ध रूपी धरनी विदेशी बन जाती है यानी विदेशियों के प्रभाव में आ जाती है, तो परमात्मा बाप गुप्त हो जाता है, अंधेरा हो जाता है। लेकिन बाबा ने तो कहा है कि विदेशी भी बाप को प्रत्यक्ष करेंगे, है? करेंगे नहीं, किया है ब्राह्मणों के परिवार में, ब्राह्मणों की दुनिया में जो बीज रूप आत्मा है, उन बीज रूप आत्माओं में तो जो दूसरे धर्मों के सशक्त बीज हैं, उन्होंने संक्षेत्र में बाप को प्रत्यक्ष किया, जिसकी यादगार में ब्रह्मा कुमार कुमारी ने बाप का प्रत्यक्ष का वर्ष मनाया, तो विदेशी बीजों ने बाप को प्रत्यक्ष तो किया, लेकिन एक तरफ प्रत्यक्ष भी करते हैं और पूरा ज्ञान न होने के कारण अनिश्चय बुद्धि भी हो जाए, कुंभकर्णी निद्रा में सो जाते तो प्रत्यक्ष हुआ न प्रत्यक्ष हुआ बराबर हो जाता, क्योंकि प्योरिटी की वो पावर नहीं है, अनेक जन्मों की खून जन्मों की वो फिर निबंध करके सामने आ जाती है। और ज्ञान मार्ग में चलते चलते अगर कहीं इंप्योरिटी आ गई तो पुरुषार्थ डाउन जरूर होगा। अपवित्रता भी चलती रहे और ज्ञान भी चलता रहे ऐसा हो नहीं सकता। ज्ञान उनकी बुद्धि में टिकेगा, परमात्मा ज्ञान जिसने प्यार की होगी, जो जितनी पवित्रता का पुरुषार्थ करेगा तो उसमें उतना ही जास्ती ज्ञान टिकेगा। अच्छा रुद्रमाला के मन के वो तो जन्म जन्मांतर के राजाए हैं, खास करके भारत के राजाए जो अपवित्र बनते रहे और यूनिटी को तोड़ते रहे। तो जन्म जन्मांतर की राजा बनने वाली आत्मा है रुद्रमाला के मन के, उनमें प्योरिटी कहेंगे या नहीं कहेंगे? उनमें प्योरिटी तो नहीं है। तो जब प्योरिटी नहीं है तो ज्ञान ठहरेगा या नहीं ठहरेगा? है प्योरिटी नहीं है तो ज्ञान कैसे ठहरेगा? है जब प्योरिटी नहीं है तो ज्ञान ठहरेगा कैसे? बाबा ने तो कहा है कि सोने के पात्र में सोनी का दूध ठहर सकता है, मिट्टी के पात्र में देह अभिमानी की मिट्टी का जो पात्र है उसमें शेरनी का दूध नहीं ठहर सकता। त्रिमूर्ति में एक शेर नहीं है, एक शेर भी है। तो शेरनी के मुख से निकला हुआ ज्ञान दूध वो अपवित्र में नहीं ठहर सकता। न ठहरने का मतलब क्या हुआ? ब्राह्मणों की दुनिया में जो रुद्रमाला के मन के बनने वाली आत्माएं हैं, एडवांस पार्टी की खास आत्माएं, प्लानिंग बुद्धि आत्माएं, क्या वो ज्ञानी जो आत्मा नहीं है? है? है ज्ञानी जो आत्मा है वो ज्ञान का ज्ञान जो है वो ज्ञान क्या हुआ जो दूसरों के ऊपर छापने छोड़े? अगर याद का बल नहीं है, परमात्मा प्यार नहीं है तो जरूर इंप्योरिटी है। मां में कम याद करो अगर मिक्सैटी है तो जरूर इंप्योरिटी। पर कितना भी ज्ञान सुनाते रहे पहले तो जो ज्यादा पवित्रता वाली आत्मा होंगी जिनका ज्यादा पवित्रता का भंडार होगा पूर्व जन्मों का वो तो सुनेगी ही नहीं। जैसे सन्यासियों को जाकर जो ब्रह्मा कुमार कुमारी ज्ञान सुनाते हैं तो प्योरिटी की पावर उनमें भरी है। वो तो बल ऊपर से सुन लेते हैं लेकिन अंदर से कुछ भी धारण नहीं करते। तो जब तक योग नहीं है, लव नहीं है, परमात्मा के प्रति प्योरिटी वाली वासना नहीं है तब तक दूसरी आत्मा के ऊपर असर नहीं पड़ सकता है। उससे ज्ञान तलवार में जोर नहीं है, याद का तो वो ज्ञानी नहीं क्या है? अज्ञानी। तो ज्ञानी तो आत्मा नहीं कहेंगे। ऐसे तो रावण को भी क्या कहा जाता था संसार में? रावण दुनिया की नजर में ज्ञानी माना गया है या अज्ञानी? ब्राह्मण माना गया है या शूद्र? रावण क्या था? प्रकांड विद्वान था, बहुत ज्ञानी था लेकिन व्यभिचारी था। और जब तक व्यभिचारी तब तक उसकी भी सदगति या गति नहीं हो सकती। अब बात शुरू हुई थी, चल रही थी, राम ही रावण बनता है और रावण फिर क्या बनता है? और राम बनता है। तो राम वाली आत्मा की सदगति कब हो? है कब होगी? जब अब विचारी होगा तब कि विचारी रहने से सदगति हो जाएगी? है कैसे होगी सदगति? है रावण के समझ नहीं आ रहा। है आप भी विचारी बनने से सदगति होगी।
अच्छा
राम जब आप भी विचारी बन जाएगा तो फिर दुनिया की सदगति होगी है? राम जब आप भी विचारी हो जाएगा तन से धन से और मन से तो फिर गति सदगति का रास्ता बंद हो जाएगा या नहीं बंद हो जाएगा? क्योंकि गति सदगति के सिवाय एक सुप्रीम सोल के कोई कर नहीं सकता। तो अब ये तो गुस्सी उलझ गई क्या? क्योंकि राम वाली आत्मा अगर अब भी विचारी बन गई तो परमात्मा शिव उसमें प्रवेश करना क्या कर देंगे? बंद कर देंगे। तो जिनको जितना सदगति और गति को पाना था तो पा लिया, तो इसलिए वो एक सेकंड अनुधा हुआ है ब्रह्मा के लिए। ब्रह्मा को विष्णु, चाहे वो व्यक्त ब्रह्मा हो चाहे वो अव्यक्त ब्रह्मा हो, ब्रह्मा को विष्णु बनने में सिर्फ एक सेकंड, क्योंकि तीव्र गति है। तो जो तीव्र गति है पुरुषार्थ की तो उसे दौड़ने वाले होते हैं, देखा जाता है तो जो अच्छे दौड़ने वाले होते हैं वो पहले धीरे धीरे चलेंगे दौड़ेंगे, और जब लास्ट चांस आएगा तो सारी ताकत लगा देंगे। तो शुरुआत में ही अगर थक गए तो लास्ट में जो हाई जंप लगानी है वो नहीं लगा सकते। तो ऐसे ही रामकृष्ण अथवा रुद्रमाला के जो 108 बच्चे हैं वो भी बड़ी तीव्र गति वाले, और तीव्र गति होती है किसको याद करने से? बिंदु को याद करने। मुरली में बोला हुआ है निराकार प्रेमी क्षिप्र गति वाले होंगे, संस्कृत गीता में भी ये बात आई है क्षिप्रम भवति मुक्तात्मा, बहुत तीव्रगामी होंगे। लेकिन अगर वाणी में बाबा ने एक बात और बोली है कि साकार प्रेमी चरित्रवान होंगे, इसका मतलब निराकार प्रेमी दुष्चरित होंगे, होंगे तो नंबर वार, एक जैसे तो सब नहीं हो सकते। तो जो निराकार प्रेमी दुष्चरित हैं वो जरूर निराकारी स्टेज में ज्यादा टिकते हैं बिंदु की याद में, और साकार को छोड़ देते हैं। क्या साकार की याद उनसे दूर हो जाती है? क्यों क्यों दूर हो जाती? जब हमारा प्रवृत्ति मार्ग है बुद्धि में बात बैठ गई कि शरीर के बगैर आत्मा जड़ होती है, बिना आत्मा के शरीर कुछ नहीं कर सकता, और शरीर के बगैर आत्मा कुछ नहीं कर सकती। जैसे बाबा ने बोला शक्ति के बगैर शिव कुछ नहीं कर सकता, और शिव के बगैर शक्तियां कुछ नहीं कर सकती। तो आत्मा और शरीर का कॉम्बिनेशन चाहिए, तो निराकार क्यों भूल जाता है या साकार ही क्यों याद रहता है? निराकार भूलता है चरित्रवान को, और साकार भूलता है किसको? दुष्चरित्र जो होते हैं जिनको ज्ञान तो मिल जाता है लेकिन पूर्व जन्मों के दुष्चरित्र हैं, तो साकार से उनको गणा हो जाती, क्योंकि बार बार यूनिटी टूटी है पूर्व जन्मों में राजाओं की। यूनिटी क्यों टूटी है? क्योंकि अनुशासनहीनता बढ़ी है, जिनको ऊंचा दर्जा देना चाहिए उनको ऊंचा दर्जा नहीं दिया। घर में बाप होता है सब को नहीं देखो, सब जब आत्मा ही नहीं हो उसने तो सब हुआ या शिव हुआ? सब मानना मुर्दा, मुर्दे में आत्मा है, है? जब उसने आत्मा ही नहीं है तो सब हुआ ना, तो मुर्दे को देखने से क्या प्राप्ति होगी? और मुर्दे में अगर आत्मा बैठी हुई हो तो उसको मुर्दा कहेंगे है? तो जीव आत्मा हुई ना, तो सबको देखते हैं क्या? तो सबको देखना पसंद करेगा क्या है? सब में तो बदबू आने लगेगी क्योंकि उसमें आत्मा ही नहीं है। और यहाँ तो एक आत्मा तो क्या डबल ट्रबल आत्मा है। और चैतन्य का की खान हो गई तो जब डबल ट्रबल आत्मा तो मुर्दा कहेंगे सब कहेंगे है? तो सबको न देखो भाई, किसको देखो? शिव को देखो। अगर शिव शंकर को मिला दिया और शंकर को ही देखने लगे तो शंकर तो क्या है, काम क्या है उसका? विनाशकारी, कहाँ ले जाएगा? पूरी दुर्गति में ले जाएगा। क्योंकि बाबा ने शंकर को अज्ञान बताया। क्या बताया? अज्ञान सारा ही माथा मोड़ लेगा। क्योंकि सन्यासियों का माथा मुड़ जाता है ना, जैसे माया माथा मुड़ लेती है, तो ऐसे शंकर को बताया अज्ञान पूरी दुर्गति में ले जाने वाला। तो फिर क्या हुआ, राम हुआ या रावण हुआ है? है? क्या हुआ? रावण हुआ ना? राम हुआ? राम कैसे, जब माथा मुड़ लिया तो राम कैसे हुआ है? ये अपनी अपनी स्मृति की बात है। जो निराकार शिव ज्योति बिंदु को देखने की अभ्यासी है साकार के साथ, प्रवृत्ति को देखने की अभ्यासी है, आने के जन्मों की जिनके प्रवृत्ति के संस्कार हैं या प्रवृत्ति को निभाने के संस्कार हैं, उन आत्माओं को कोई कठिनाई महसूस नहीं होगी। कठिनाई किनको महसूस होगी? जिन्होंने पूर्व जन्मों में प्रवृत्ति को तोड़ा है, धोखा दिया है, एक प्रवृत्ति को छोड़ करके दूसरी प्रवृत्ति जोड़ी, तीसरी जोड़ी, चौथी जोड़ी, तो दुख का लेन देन किया, विचारी बने और बनाया, तो ऐसी आत्माएं जो है वो सही याद नहीं कर सकती, उनको कठिनाई अनुभव होगी। और जिनके अच्छे संस्कार हैं पूर्वजन्मों के, आप भी विचारी पहले के संस्कार हैं, उनको सहज अनुभव होगा। साकार में निराकार देखना, बुद्धि में बात तो आ गई ना, कि साकार के बगैर निराकार आत्मा का कोई मूल्य नहीं, निराकार आत्मा का साकार के बगैर कोई मूल्य नहीं। प्रकृति जड़ है, लेकिन प्रकृति जब प्रकृति पति के साथ है तो विनाशकारिणी नहीं हो सकती। प्रकृति विनाशकारिणी कब बनती है? पांच तत्व जो है वो उथल पुथल कब मचाते हैं? सारी शक्ति का प्रकृति के द्वारा विनाश होगा। सबसे बड़ा विनाश करेगी प्रकृति, नेचर। कब करेगी? अंत में, जब प्रकृति पति से प्रकृति जुदा हो जाए।